30 دسمبر 2009 کو ایرانی عوام کے مظاہرے کربلائی بصیرت کا جلوہ تھے، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ بحرین اور سعودی عرب میں عوام کی انقلابی تحریک، حکومتی افواج کی بربریت، براہ راست فائرنگ میں متعدد زخمی۔ سعودی حکومت کی جانب سے امریکی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش، $30 ارب کے اسلحے کی خریداری کا معاہدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حسن عباس حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے khabrein@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے 30 دسمبر 2009 کے مظاہروں کو اسلامی انقلاب کی تاریخ کا سنہری باب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 30 دسمبر کربلائی بصیرت کا جلوہ ہے۔ تہران یونیورسٹی میں نماز جمعہ کے عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ ایرانی عوام کو 2009 کے یوم عاشورہ پر ہونے والے بے حرمتی کے واقعات پر شدید صدمہ پہنچا تھا، اور انہوں نے 30 دسمبر کو وقت کے یزیدوں سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے ایران میں صدارتی انتخابات کے بعد رونما ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایران کے کٹر دشمنوں کے کیمپ نے شرپسندوں کی کھلی اور بھرپور حمایت کی تھی، اور امریکہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ایران میں ایک تاریخی فتنہ سر اٹھانے والا ہے۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے واضح کیا کہ ایران میں شر پھیلانے والوں کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات سے قبل امریکی وزیر خارجہ بھی یہ بات کہہ چکی تھی کہ ایران کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے خطے کی سیاسی تبدیلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تبدیلیاں مکمل طور پر ایک اسلامی تحریک اور مسلمان عوام کے دلوں کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی تبدیلیوں کے بارے میں امریکیوں کے اندازے اور جائزے بے بنیاد ہیں، کیونکہ اسلامی بیداری کی لہر نے انہیں حیرت میں ڈال دیا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے واضح کیا کہ اسلام کے اساس پر ایک نیا مشرق وسطی جنم لینے والا ہے۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے اسلامی بیداری کی تحریک میں شامل قوموں کو خدا کی جانب سے حتمی کامیابی کی نوید دیتے ہوئے کہا کہ تیونس کے انتخابات میں اسلام پسندوں کی کامیابی اس بات کی دلیل ہے کہ عوام دل و جان سے اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ملت ایران کے دشمن دروغگوئی اور انتخابات کو مشکوک بنا کر حکومت اور انقلاب کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ مغربی ایران کے صوبے ایلام میں اپنی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا کہ انقلاب اسلامی کے بعد کے تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام اگر میدان عمل میں موجود ہوں تو ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور بدخواہوں کی پیچیدہ سے پیچیدہ سازشوں اور طاقت فرسا دباؤ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے 30 دسمبر 2009 کو ہونے والے پرجوش مظاہروں میں ملت ایران کی بھرپور شرکت کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ مختلف میدانوں میں ملت ایران کی وسیع اور بابصیرت موجودگی نے نہ صرف ملکی وقار میں اضافہ کیا بلکہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ صدر احمدی نژاد نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایرانی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ملک کو تعطل سے دوچار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ عوام خدائی طاقت کا جلوہ ہیں۔ واضح رہے کہ 30 دسمبر کا دن ایران میں صدارتی انتخابات کے بعد رونما ہونے والے واقعات اور یوم عاشورہ کے بے حرمتی کے بعد عوام کے پرجوش مظاہروں کی یاد دلاتا ہے، جسے ایران میں یوم بصیرت کا نام دیا گیا ہے۔ ایرانی عوام نے 30 دسمبر 2009 کو مظاہرے کر کے شرپسندوں اور یوم عاشورہ کی بے حرمتی کرنے والوں سے اپنی نفرت کا اعلان اور ان واقعات میں ملوث عناصر کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی ولایت 90 فوجی مشقیں 7ویں دن بھی پیراشوٹ بردار کمانڈوز کی مشقوں سے جاری رہیں۔ ولایت 90 بحری فوجی مشقوں کے ترجمان ریئر ایڈمرل سید محمود موسوی نے بتایا ہے کہ سمندر میں معینہ اہداف پر حملے اور شہاب و آزرخش اسپیڈی بوٹس کے ذریعے فائرنگ کی مشقیں کی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسپیشل فورس نے فرضی دشمن کے ساحلی علاقوں پر ساحل سے سمندر میں فائرنگ کی، جبکہ فضائیہ کی دفاعی یونٹ نے فرضی دشمن کے پیادہ فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ ولایت 90 فوجی مشقوں کا فنی مرحلہ फर्जी दुश्मन के फौजियों के बहरिया के यूनिट से इलहाक के बाद खत्म हो जाएगा और शनिचर के रोज से ताकत की नुमाइश का तीसरा मरहला शुरू होगा। फौजी मशकों के तर्जुमान ने तीसरे मरहले की वजाहत करते हुए बताया कि इस मरहले में साहिल से समंदर, जमीन से जमीन और जमीन से फजा में फायर किए जाने वाले मुख्तलिफ अकसाम के मिजाइलों, समंदर के अंदर इस्तेमाल होने वाले टारपीडो और कांधों से फायर किए जाने वाले रॉकेटों के तजुर्बात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फौजी मशकों का तीसरा मरहला 2 जनवरी तक जारी रहेगा। ईरान जौहरी मुजाकिरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ये बात वजीर खारजा अली अकबर सालेही ने तेहरान में चीन के नायब वजीर खारजा फू यांग के साथ मुलाकात के मौके पर बातचीत करते हुए कही। वजीर खारजा अली अकबर सालेही ने रूस की पेशकर्दा तजवीज की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ईरान जौहरी मुजाकिरात का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। वजीर खारजा ने तेहरान बीजिंग ताल्लुकात में फरोग का खैर मकदम करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तेजी के साथ फरोग पा रहे हैं और ईरान और चीन एक दूसरे के काबिल एतमाद दोस्त बन गए हैं। चीन के नायब वजीर खारजा फू यांग ने इस मौके पर बीजिंग तेहरान ताल्लुकात को मुस्बत और तामीरी करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्कों के दरमियान सलाह व मशवरे का अमल जारी रहेगा जिससे ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में मदद मिलेगी। फू यांग ने ईरान की जौहरी सरगर्मियों का जिक्र करते हुए तेहरान के खिलाफ हर किस्म के दबाव और पाबंदियों को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों के मामले को सिर्फ और सिर्फ मुजाकिरात के जरिए हल किया जाना चाहिए। बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों में आले खलीफा हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। बहरीन से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को अलमुसल्ला, अस्सार और अलकरामा इलाकों में मुजाहिरीन ने आले खलीफा हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे और उन पर फायरिंग की। जजीरा सित्रा में भी सिक्योरिटी फोर्स ने एक टीवी चैनल के कैमरामैन पर फायरिंग की जिसकी हालत तश्वीशनाक बताई गई है। रिपोर्टों के मुताबिक अल मिक्शा और अकर नामी गांव में लोगों ने मजहबी रहनुमा शेख इदरीस अल अकरी समेत कई लोगों की गिरफ्तारियों के खिलाफ धरना दिया। वाज़ेह है कि बहरीन की हुकूमत जमहूरी इस्लाहात और कैदियों की रिहाई के बार बार के अपने वादों के बावजूद कैदियों को रिहा नहीं कर रही है। 14 फरवरी तहरीक ने आले खलीफा हुकूमत को खबरदार किया है कि जेर हिरासत अफराद खास तौर से खवातीन को रिहा न किए जाने की सूरत में वसी पैमाने पर धरना दिया जाएगा। बहरीन में 14 फरवरी से इनकलाब का आगाज हुआ है और पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बहरीनी और सऊदी फौजियों के तशद्दुद में अब तक 10 अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। सऊदी अरब के मशरकी इलाकों में आले सऊद की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे बदस्तूर जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्स के हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक हजारों की तादाद में लोगों ने मशरकी सऊदी अरब के इलाके में मुजाहरे किए और मुल्क के शिया मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत के पुरतशद्दुद इकदामात की मजम्मत में नारे लगाए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये मुजाहरे उस वक्त तशद्दुद का रुख इख्तियार कर गए जब सऊदी अरब की शाही हुकूमत के सिक्योरिटी अहलकारों ने पुरअमन मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जाती है। ये मुजाहरे ऐसे वक्त में हुए हैं जब सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने अल अवामिया के शिया आबादी वाले इलाके में भारी तादाद में सैकड़ों सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात कर दिया है। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने मुल्क भर में हर किस्म के जलसे जुलूसों और मुजाहरों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों ने सऊदी अरब के मशरकी इलाकों समेत मुल्क भर में अवाम की सरकोबी की मजम्मत करते हुए सऊदी हुकूमत पर आलमी दबाव डालने का मुतालबा किया है। अमरीका ने सऊदी अरब के साथ 30 अरब डॉलर के जंगी साजो सामान की फरोख्त के एक मुआहदे की खबर दी है जिससे इस मुल्क की अबतर माशी सूरत हाल में रोजगार के 50,000 मौके पैदा हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक इस मुआहदे पर रियाज में हफ्ते के रोज दस्तखत हुए हैं लेकिन अमरीकी हुकाम ने जुमेरात को हवाई में इस मुआहदे पर दस्तखत का ऐलान किया है। मुआहदे की रूह से अमरीका बोइंग कंपनी के 84 नए बम्बार जेट तैयारे F-15SA सऊदी अरब को देगा और इस मुल्क के 70 जंगी तैयारों की तामीर नाव की जाएगी। अमरीकी हुकाम ने बताया है कि मुआहदे में जरूरी चीजों और स्पेयर पार्ट्स की फराहमी, नीज ट्रेनिंग और मेंटेनेंस भी शामिल है। अमरीका की बोइंग कंपनी इन तैयारों को बनाएगी और व्हाइट हाउस के हुक्काम के मुताबिक इस मुआहदे से 50,000 नौकरियां निकलेंगी और मुल्क की मईशत को सालाना 3.5 अरब डॉलर की मदद मिलेगी। ये मुआहदा सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान 60 अरब डॉलर की मालियत के उस 10 साला असलहा मुआहदे का हिस्सा है जिसकी खबरें अक्टूबर 2010 में शाये हुई थीं। एक बरस कबल अमरीकी कांग्रेस ने सऊदी अरब के साथ असलहे के मुआहदे पर दस्तखत को मंजूर किया था। इसी तरह अमरीकी वजारत जंग के हुक्काम ने बताया है कि तमाम असलहा और साजो सामान 15 से 20 बरस के दौरान सऊदी अरब के हवाले कर दिए जाएंगे। अमरीकी हुकूमत ने कांग्रेस के अराकीन को इत्मीनान दिलाया है कि सऊदी अरब को दिए जाने वाले असलहे से इसराइल को कोई खतरा लाहिक नहीं होगा। तेल की दौलत से मालामाल सऊदी अरब अमरीका की तवानाई की जरूरतों को पूरा करने और सियासी बहरानों में उसे सहारा देने वाला अहम तरीन मुल्क समझा जाता है। यमन में अवामी इनकलाब सरकारी कारकुनों की वसी हड़ताल के आगाज के साथ ही नए मरहले में दाखिल हो गया है। यमन में इस वक्त सरकारी इदारों के इनकलाब के नाम से एक नई लहर शुरू हो चुकी है जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन इदारों के दरवाजे बंद करके उन बदउनवान हुकाम की बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं जिन्हें हुकूमत ने ओहदे अता किए हैं। यह ऐसी सूरत हाल में है कि जब इससे कबल इत्तला दी गई थी कि यमन एयरलाइंस सरकारी टीवी चैनल और इसी तरह फौज के कुछ शोबे के कारकुनों ने अपने इदारों में धरना देकर सरकारी इदारों से नाअहल बदउनवान और यमन के आला हुकाम से करीब ओहदेदारों को हटाने का मुतालबा किया था। 10 दिन कबल तईज से सनआ तक कारवान हयात नामी मार्च के आगाज के साथ ही यमन में माहौल गैर मामूली तौर पर बदल रहा है और अली अब्दुल्ला सालेह का मामला पूरी तरह से निपटाने के लिए इनकलाबियों का अज़्म मजीद मुस्तहकम हो गया है। सहूनी फौज के जंगी तैयारों ने गजा पट्टी पर हमला करके एक फिलिस्तीनी को शहीद कर दिया है। गजा में अस्पताल के जराए ने बताया है कि इसराइली जंगी तैयारों ने आज एक बार फिर गजा शहर पर रॉकेट से हमला किया है जिसमें एक फिलिस्तीनी शहरी शहीद जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। गजा पर मंगल के रोज से होने वाले इसराइली हमलों में अब तक कम अज कम 2 फिलिस्तीनी शहीद और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से कई की हालत नाजुक बताई जाती है। सहूनी हुकूमत के वजीर आजम ने मिस्र और इराक की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। बहरूस से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सहूनी हुकूमत के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने काबिना के इजलास से खिताब करते हुए खित्ते की तब्दीलियों और खास तौर से इराक से अमरीकी फौज के इनखला को खतरनाक करार दिया है। बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह सूरत हाल इसराइल के लिए बिल्कुल नई और खतरनाक है। नेतन्याहू ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए इसराइली फौज के बजट में इजाफा करना जरूरी हो गया है। सहूनी हुकूमत के वजीर आजम ने मजीद कहा है कि सहराए सीना में मिस्र के साथ सरहद के करीब हायल दीवार की तामीर का काम 1 साल से भी कम के अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सरमाया दाराना निजाम के खिलाफ अमरीकी आवाम की कब्जा करो तहरीक जारी है।
वॉल स्ट्रीट मुखालिफ तहरीक के एक हामी ग्रुप का कहना है कि वाशिंगटन में सरमायादाराना निजाम के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। वाशिंगटन पर कब्जा करो नामी इस ग्रुप के कारकुनों का कहना है कि हमारी तहरीक फैलती जा रही है और हम व्हाइट हाउस के करीब वाकई शहर के नेशनल पार्क में मुजाहरों का सिलसिला जारी रखेंगे। उधर कांग्रेस पर कब्जा करो के नाम से सरगर्म एक और ग्रुप ने 17 जनवरी को वाशिंगटन पर कब्जा करो तहरीक के साथ मिलकर मुजाहरे करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान 17 जनवरी को मौसम सरमा की छुट्टियां गुजारने के बाद कांग्रेस के इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन डीसी वापस लौटेंगे। न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट मुखालिफ तहरीक समेत अमरीका के दीगर शहरों में सरमायादाराना निजाम के खिलाफ मुजाहरे करने वालों के खिलाफ अमरीकी पुलिस के वहशियाना रवैये और उनके कैंपों पर हमले के बाद वाशिंगटन में सरमायादाराना निजाम के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे होते चले आए हैं। 7 दिसंबर को वाशिंगटन में लेबर यूनियनों के हजारों अरकान ने मुजाहरे किए थे और शहर की अहम तरीन शाहरा को कई घंटों के लिए बंद कर दिया था। पुलिस ने मुजाहरीन पर हमला करके 60 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। दरियासन अमरीका में जहां समाजी नाइंसाफियों और इकतसादी बहरान के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है, वहीं सैकड़ों की तादाद में पैरामेडिकल स्टाफ के अरकान ने भी न्यूयॉर्क में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। ये मुजाहरे कम तनख्वाहों और काम के ज्यादा दबाव के खिलाफ किए गए हैं। नर्सों ने धमकी दी है कि अस्पतालों की इंतजामिया ने उनके मुतालबात पर तवज्जो न दी तो वो 10 जनवरी से बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू कर देंगे। मुजाहरीन का कहना था कि अस्पताल के इंतजामिया को सिर्फ अपनी जेबें भरने की फिक्र लाहिक है और नर्सों और दूसरे मुलाजमीन के मुतालबात और काम के ज्यादा दबाव पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क के अस्पतालों से रुजू करने वाले अफराद की तादाद इस कदर ज्यादा है कि नर्सिंग स्टाफ को 24 घंटे में 60 मिनट से भी कम का वक्त आराम के लिए मिल पाता है। बहुत से अस्पतालों ने इक्तसादी बहरान की वजह से नर्सिंग स्टाफ में कमी कर दी है और 3 अफराद की जगह 1 शख्स को काम करना पड़ रहा है।
روسی وزارت خارجہ نے دنیا کے کچھ ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کے عنوان سے انسانی حقوق کے سلسلے میں اپنی پہلی رپورٹ شائع کر دی ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنی اس رپورٹ میں امریکہ میں اظہار رسانی اور فون ٹیپنگ سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے کئی نمونوں کی سمت اشارہ کیا ہے۔ رپورٹ میں اسی طرح امریکہ میں انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کے ساتھ مختلف قسم کے امتیازی سلوک اور گوانتانامو جیل بند کیے جانے کے سلسلے میں باراک اوباما کی وعدہ خلافی کی سمت بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ روس نے وائٹ ہاؤس پر اسی طرح الزام لگایا ہے کہ وہ سی آئی اے کے ایجنٹوں کو عدالتی کارروائی سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ امریکہ نے اس رپورٹ پر دفاعی موقف اختیار کیا ہے اور امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں کسی ملک کی حکومت، شخصیتوں یا تنظیموں کی جانب سے اظہار رائے کو ہم اپنے داخلی امور میں مداخلت نہیں سمجھتے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے بم دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ عراقی ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ جمعرات کی رات جنوبی بغداد میں فوج کی ایک گاڑی کے راستے میں ہوا۔ اس حملے میں ایک افسر اور ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے الزام میں عراق کے نائب صدر طارق الہاشمی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے بعد سے عراق کی دارالحکومت بغداد میں دہشت گردی کے واقعات میں شدت آ گئی ہے۔ ادھر عراق کے ایک رکن پارلیمنٹ طارق الہاشمی کے معاملے میں امریکی مداخلت ادھر عراق کے ایک رکن پارلیمنٹ نے طارق الہاشمی کے معاملے میں امریکی مداخلت کی مذمت کی ہے۔ حکومت قانون نامی پارلیمانی اتحاد کے ایک رکن عبدالحلیم الرحیمی نے کہا ہے کہ طارق الہاشمی کا معاملہ خالص اندرونی معاملہ ہے اور اسے عراقی عوام ہی حل کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب العراقی الائنس کے 3 سرکردہ رہنماؤں نے، جن میں اتحاد کے سربراہ ایاد اللاوی، پارلیمان کے اسپیکر اسامہ نجیفی اور وزیر معیشت رافع العیساوی شامل ہیں، وائٹ ہاؤس کو ایک خط لکھا ہے جس میں امریکہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ عراقی کابینہ کی تشکیل میں براہ راست مداخلت کرے اور وزیر اعظم نوری المالکی کی پالیسیوں کا مقابلہ کرے جو امریکی مفادات کے سراسر منافی ہیں۔ اور آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیاں۔ تیس دسمبر 2009 کو ایرانی عوام کے مظاہرے کربلائی بصیرت کا جلوہ تھے، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ بحرین اور سعودی عرب میں عوام کی انقلابی تحریک، حکومتی افواج کی بربریت، براہ راست فائرنگ میں متعدد زخمی۔ سعودی حکومت کی جانب سے امریکی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش، 30 ارب ڈالر کے اسلحے کی خریداری کا معاہدہ۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتا ہے urdu.sahar.tv.ir۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔